ये जितनी बातें हैं तुम्हारी सब बेकार की हैं। हरि बोल, इधर देखो, तुम्हारी जितनी बातें सब बेकार की हैं, हैं? और अर्जुन से भगवान ने क्या कहा कि तुम कायर मत बनो, हृदय की दुर्बलता को त्यागो, है ना। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात तो छोड़ दी अर्जुन ने, लेकिन फिर अंतिम तर्क यही दिया कि ठीक है, अगर भाग्य सब बात मेरी गलत है तो ये बताओ ये कहां तक सही है कि मैं द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ युद्ध करूं, ये कहां तक सही है? है? फिर अर्जुन ने मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया पहले कि भीष्मम द्रोणम च मधुसूदन है, मधुसूदन हे मधुसूदन मैं द्रोण और भीष्म के साथ युद्ध कैसे करूं, क्योंकि मधु का आपने वध किया और मधु क्या था, कौन था, असुर था, आपने तो असुर का वध किया मधु, है ना, लेकिन ये द्रोण और भीष्म असुर तो नहीं है, है ना? आपके वंश में भी पैदा नहीं हुआ मधु, वो तो असुर वंश का था, आप यदु वंश के हैं तो आपने मधु को मारा, लेकिन ये तो हमारे ही वंश के हैं और हमारे ही आचार्य हैं भीष्म और द्रोण, इनको मैं कैसे मारूं। लेकिन फिर अर्जुन के दिमाग में आया कि नहीं नहीं, मधु जो है भगवान कृष्ण के वंश में भी एक हुए हैं राजा, भगवान कृष्ण के वंश में एक राजा मधु हुए हैं। अब देखिए एक कृष्ण वंश जो हमने बनाया है, एक सूची बनाई है कृष्ण वंश की, जो कि कृष्ण से शुरू होती है और कृष्ण तक ही आती है, मतलब पुत्र के पुत्र के पुत्र करके ये कृष्ण वंश हमने बनाया है। श्री कृष्ण के पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, उनसे नहुष, उनसे ययाति, उनके पुत्र यदु, उनके पुत्र क्रोष्टा, उनके पुत्र ब्रजिनवान, फिर स्वाहित, विसद्गु, चित्ररथ, शशबिंदु, पृथुस्रवा, धर्म, उष्णा, रुचक, ज्यामघ, विदर्भ, क्रथ, कुंती, वृष्णी, निर्वृति, दसारह, व्योम, जीमूत, विकृति, भीमरथ, नवरथ, दशरथ, ये दशरथ राम के पिता दशरथ नहीं है, ये यदुवंश के सब राजा हैं, मतलब उनके पुत्र के पुत्र हैं। दशरथ के पुत्र शकुनी, उनसे करंभी, उनके पुत्र देवरात, उनके पुत्र देवछत्र, फिर मधु, मधु से ही माधव बने हैं, मधु के वंश में है भगवान इसलिए माधव, तो ये मधु नाम आया है भगवान कृष्ण से। मतलब अगर ब्रह्मा अत्रि इस प्रकार की अगर परंपरा में देखा जाए तो मधु का नंबर 38वां है, ठीक है, और भगवान कृष्ण 58वें हैं। अगर पहले श्री कृष्ण को माना जाता है और फिर अंत में भी वसुदेव के पुत्र कृष्ण हुए हैं, तो अगर कृष्ण से लेकर के कृष्ण तक नाम 58 आते हैं, 58वीं पीढ़ी में श्री कृष्ण फिर आ गए, पहली पीढ़ी में भी कृष्ण है, 58वीं पीढ़ी में भी कृष्ण है, तो ये जो मधु है 38वीं पीढ़ी में है, ठीक है। अगर वसुदेव के पुत्र कृष्ण है, अगर इनसे ऊपर देखा जाए तो कितनी हो जाएगी, 37 घटाएं, 37 घटाएंगे 58 में 37 घटाएंगे तो 21 पीढ़ी ऊपर भगवान कृष्ण से ऊपर 21वीं पीढ़ी पर मधु नाम के एक राजा हुए हैं। आप कृष्ण से ऊपर देखिए, कृष्ण के पुत्र वसुदेव नहीं, कृष्ण के पिता वसुदेव, उनके पिता शूरसेन, उनके पिता देवमीढ़, उनके पिता हृदिक, उनके पिता भोज और उनके पिता शिनी, उनके भजमान, उनके शूर, उनके विदुरथ, फिर चित्ररथ, फिर वृष्णी, फिर अनमित्र, फिर युधाजित, फिर वृष्णी, सात्वत, अजु, पुरुहोत्र, अनु, कुरुवस और उनके पिता मधु। तो कृष्ण से ऊपर भी जो 21 पीढ़ी ऊपर मधु नाम के राजा हुए हैं। तो जब अर्जुन ने कहा मधुसूदन, तो कहीं अर्जुन ने सोचा कि इसका मतलब यह तो नहीं कि आपने उन मधु का वध किया हो जो आपकी पीढ़ी में हुए हैं, 21वीं पीढ़ियों पर हुए, नहीं है ना। इसी फिर बाद में अर्जुन ने क्या कहा, अरिशूदन, अरिशूदन, अरि माने शत्रु के मारने वाले, आपने तो जिस मधु को मारा है वो कौन था, शत्रु था, आपके वंश के थोड़ी थे वो, आप समझे ना। तो दो मधु हुए, एक तो भगवान कृष्ण के वंश में उनके जो है पूर्वज हुए मधु, और एक मधु हुआ है असुर। तो अर्जुन का, अर्जुन इसलिए दो शब्दों का प्रयोग किया, एक तो मधुसूदन और दूसरा अरिशूदन है। तो मधुसूदन से अर्जुन के दिमाग में आया कि मधुसूदन का मतलब यह भी हो सकता है कि आपने अपने जो कुल के गुरु हैं, पूर्वज हैं, उनको मारा हो। लेकिन नहीं नहीं, वो मधु आपने थोड़ी मारा, आपने तो शत्रु मधु को मारा था, इसलिए कहा है पूजा राव अरिशूदन, कि ये हे अरिशूदन, मधुसूदन और अरिशूदन दोनों शब्द इसी श्लोक में, पहली लाइन मधुसूदन, नहीं फिर उसको और स्पष्ट करने के लिए अरिशूदन, अर्जुन ने ये शब्द प्रयोग किए हैं। तो अर्जुन की बड़ी समस्या है, यहां पर अर्जुन ने अपनी बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करी है ना। और प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे, कृष्ण के पितामह, कृष्ण के पितामह कौन है, उग्रसेन नहीं, हाँ सूरसेन, सूरसेन कृष्ण के पितामह है ना, और नाना कौन है, उग्रसेन, उग्रसेन भी नहीं है नाना, देवकी के जो पिता हैं वो हैं देवक, उग्रसेन भी देवक के भाई हैं, तो वो भी नाना लगे, लेकिन सगे नाना उनके देवक हैं, ठीक है ना, देवक और उग्रसेन दोनों भाई हैं, है ना। तो जैसे भीष्म पितामह से आप कह रहे हैं मुझे कि मैं युद्ध करूं, उनको उल्टा बाण मारूं, उलट करके बाण मारूं, तो क्या आप ऐसा करेंगे, अपने पितामह सूरसेन हैं या अपने नाना देवक या उग्रसेन हैं, क्या उलट करके आप उनको मारेंगे, अर्जुन का ये प्रश्न है। या फिर आप कहते हैं द्रोणाचार्य पर मैं उलट करके बाण मारूं, तो क्या आपने, आपके पिता नहीं आपके गुरु आचार्य सांदीपनि मुनि हैं, क्या उन पर आप उलट करके बाण मारेंगे, ये जो है अर्जुन ने प्रश्न किया। लेकिन नहीं, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो भगवान कृष्ण ने भी ऐसा किया है, और कब किया है, परशुराम जी के साथ किया, परशुराम जी है ना, किया है, ऐसी बात नहीं है। और जो है यदुवंश का भी जब संहार हुआ, यदुवंश का जब संहार हुआ है आगे चल करके, तो कृष्ण बलराम मारते रहे, जो यादव उनकी तरफ आ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण और बलराम ने उन अपने बंसियों को मारा। तो भगवान कोई ऐसी शिक्षा नहीं देते जो वो स्वयं नहीं करते हैं, करते हैं, स्वयं करते हैं सब कुछ। किसी का कोई प्रश्न है, हाँ आपका प्रश्न, नहीं कंस उग्रसेन का पुत्र था है ना, देवक की जो है सात या आठ कन्याएं थी, जिनमें सबसे छोटी देवकी थी, आठ, हाँ आठ कन्याएं थी है ना, उनमें सबसे छोटी थी देवकी, और उग्रसेन के भी नौ पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा कंस था, तो कंस असली मामा नहीं था। और कोई प्रश्न किसी का, हाँ पूछिए।
इसमें आपने कहा मधुसूदन से अर्जुन ने समझा कि कहीं वो अपने वंश के को नहीं मारा,
नहीं मधुसूदन शब्द से अर्जुन ने सोचा कि कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं मान लिया जाए कि भाई मधु, आपने उस मधु को मारा है जो आपके वंश में जो बड़े वृद्ध हुए हैं।
इसी गीता के अगले चैप्टर में आया है कि कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा है कि हमारे तमाम जन्म हुए हैं और आपके भी तमाम जन्म हुए हैं, मुझे अपने जन्म याद है लेकिन तुमको नहीं याद है, कृष्ण को अपने खुद की जरूरत है, तो कृष्ण के बारे में कैसे आती है बात मालूम हुई कि जो भी हो सकते हैं, कैसे बात है?
नहीं, जहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, अपने जन्म पते हैं सब और तुम्हारे भी जन्म सब पता है, तुम्हें नहीं पता है, लेकिन ये जो वंश के जो राजा हैं, हुए हैं ये सब राजा, तो ये तो ब्रह्मा जी से कौन कौन हुए वो सब सूची पहले से ही सबको पता है। राजाओं के वंश की तो जो ना बिरजा वाली जो भाट है, बंदीगण है, वो भी बखान करते रहते हमेशा, भाई ये पवित्र वंश है, ये वंश बहुत पवित्र है। और जब शादियां होती हैं है ना, तो राजा के जो पुरोहित होते हैं वो अपने राजा के वंश का वर्णन करते हैं कि भाई वहां से वंश चला है, ये कहां से वंश चला है, ये चंद्र वंश है, तो चंद्रमा से के बाद कौन हुए, फिर उनके बाद कौन हुए, चंद्र वंश, यदु वंश है, यदु वंश का मतलब है कि यदु के बाद फिर कौन हुए, फिर उनके बाद कौन हुए, उनके बाद फिर ये राजा हुए, तो यदु के बाद ये इतनी पीढ़ी के बाद ये राजा अभी चल रहे हैं। जब यादव कहा जाता है कृष्ण को, यादव या माधव कहा जाता है, मधु, मधु के वंश में पैदा हुए, माधव कृष्ण को माधव जो कहा जाता है इसलिए कि मधु के वंश में पैदा हुए, तो हर कोई कहेगा कि मधु के वंश में अगर पैदा हुए आप माधव हैं तो कितनी पीढ़ी के बाद आप पैदा हुए, तो सब गिनाई जाते हैं कि मधु है वो राजा थे, फिर उनके बाद ये हुए, फिर उनके बाद वो हुए, इस तरह से फिर ये 21वीं पीढ़ी है जो कि वसुदेव या कृष्ण हुए हैं मधु के बाद, ऐसा है। तो ये वंश परंपरा कहलाती है, जैसे कि गुरु परंपरा होती है ना, तो हमने ये गुरु परंपरा दी है कि भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी, फिर उनसे है ना नारद जी, उनके उनके बाद व्यास जी, ये शिष्य परंपरा, उसी प्रकार से पुत्र परंपरा भी जो है राजाओं की सुरक्षित रखी जाती है, क्योंकि तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना, राजा कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं होता, बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो भाई इसके बाद किसको राजा बनाएंगे, फिर उसके बाद उनके पुत्र को राजा बनाएंगे, फिर उनके बाद उनके पुत्र को राजा बनाएंगे, इतिहास होता है, बहुत बड़ा विस्तृत इतिहास होता है, और वो सब इतिहास सुरक्षित रखा जाता है राजाओं के वंश का, है ना, उनके चरित्र के भी जो है ना इतिहास है वो सुरक्षित रखे जाते हैं, कैसे हुए क्या हुआ, है ना। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने पूरा वंश वर्णन किया है परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है कि सूर्य वंश का और चंद्र वंश का वर्णन कीजिए, है ना, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने इस वंश के जितने भी राजा उन सबका नाम बताया, बल्कि तो बहुत जो है विशाल वंश है चंद्र वंश, मैंने तो एक एक नाम ही केवल बताए हैं, कृष्ण से कृष्ण तक भाई एक एक पुत्र का नाम बताया है, तो उनके और भाई हुए और उनसे और भी बच्चे हुए, तो बहुत वंश विस्तृत है, वो तो श्रीमद् भागवत में ही आपको मिलेगा, बहुत नाम है, मैंने तो केवल 58 नाम दिए हैं कृष्ण से शुरू करके और कृष्ण को से अंत तक, इतना ही लिया है, तो कम से कम इतना भी अगर हम देख लें तो ये भी जो ना बड़ी बात है ना। और कोई प्रश्न? अच्छा, कृष्ण क्या थे, ग्वाले थे या क्या थे, कौन बताएगा कृष्ण क्या थे, ग्वाले थे, हमें क्या समझना चाहिए कृष्ण कौन है? सबसे पहले जो किसी को अगर हम बताएं कि कृष्ण कौन है ना, ये कृष्ण भावनामृत संघ कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो इसमें हम कृष्ण के बारे में क्या बताएं, अगर कोई कुछ पूछे कि कृष्ण कौन है तो हमें क्या बताना चाहिए? हाँ, ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्, वो है कृष्ण, पैदा नहीं होते।
आजकल के यादव है क्या भाई, निर्वंश को चला रहा है, इससे बड़ा संबंध है जो आजकल जो प्रोफेशनल है यादव
का? वैसे तो यदुवंश पूरा नष्ट हो चुका और यदुवंश में केवल एक बचे थे वज्रनाभ, जो अनिरुद्ध के पुत्र थे, और वज्रनाभ के पुत्र हुए फिर प्रतिबाहु और उनके पुत्र हुए सुबाहु, ऐसे हुए। तो मतलब वो वंश जो है नष्ट हो गया था जरूर, लेकिन एक व्यक्ति से फिर वंश और हुआ होगा। अब कहां तक, लेकिन प्रभुपाद जी इसको महत्व नहीं देते, क्योंकि वो वंश नष्ट हो ही जाता है, क्योंकि वो कुल की जो पवित्रता है वो नष्ट हो जाती कलयुग के प्रभाव से। अब वो वंश वो रहे नहीं इस तरह से। अब चंद्रवंश में एक राजा जो द्वापर युग में हुए थे, देवापी नाम के, जो संतनु के बड़े भाई थे, उन्होंने राज्य नहीं किया था, उन्होंने विवाह भी नहीं किया, तो अभी भी वो जिंदा हैं देवापी। तो चंद्रवंश के जो राजा देवापी हैं वो अभी जिंदा हैं, और कलयुग के अंत में जब सतयुग शुरू होगा तब वे विवाह करेंगे। सोचो 432,000 साल का ये कलयुग है, अभी वो तपस्या कर रहे हैं, और जब 432,000 साल के बाद सतयुग शुरू होगा और फिर लोगों की आयु बड़ी होने लगेगी, है ना, उस समय वो विवाह करेंगे और चंद्रवंश आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर आप मान भी लें कि वो यादव लोग जो अभी जो कहते हैं अपने को वो यदुवंश के हैं, मान लो तो बैजनाथ के बाद राजा हुए, है ना, तो वो प्रतिबाहु, फिर उनके पुत्र सुबाहु हुए, ये हुए, ये फिर बाद में कलयुग के प्रभाव से वो वंश मतलब पवित्र नहीं रहा, वो पवित्रता समाप्त हो गई, है ना। केवल कहने के लिए पुत्र नहीं है कि भाई कहने के पुत्र हैं, वो उतनी पवित्रता भी होनी चाहिए ना, है ना। तो ऋषि मुनियों के अनुसार वो वंश समाप्त हो गए यदुवंश। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भाई ये इसके बाद फिर ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद फिर चंद्रवंश नष्ट हो गया। कलयुग में चंद्रवंश और सूर्यवंश दोनों नष्ट हो जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। चंद्रवंश का वर्णन किया है बस, यहां इसके बाद चंद्रवंश नष्ट हो गया। लेकिन चंद्रवंश के एक राजा है, उसी प्रकार से राजा मरुत हैं सूर्यवंश के, जो कि अभी जिंदा हैं, और वे जो है सतयुग में फिर विवाह करेंगे, तो सूर्यवंश आगे बढ़ेगा। तो सूर्यवंश चंद्रवंश आप अपने को लोग अगर कहते हैं कि हम सूर्यवंश के हम चंद्रवंश के हैं तो कह सकते हैं, लेकिन कलयुग में वो दोनों वंश नष्ट हो चुके हैं। नष्ट नहीं भी हुए, सतयुग में फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसा है। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, इनका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। राजा द्रुपद को अर्जुन ने बंदी बनाया द्रोणाचार्य के कहने से, तो द्रुपद, इनका प्रश्न है कि द्रुपद को क्या अर्जुन से द्वेष नहीं हुआ? नहीं, अर्जुन से द्वेष नहीं हुआ, बल्कि अर्जुन की वीरता से बहुत प्रभावित हुए। राजा द्रुपद अर्जुन की वीरता से बहुत प्रभावित हुए, और अर्जुन की कोई दुश्मनी थी भी नहीं राजा द्रुपद से। द्रोणाचार्य ने जो कुछ भी किया, जो कुछ कहा, अर्जुन को केवल आदेश का पालन करना था, इसलिए राजा द्रुपद अर्जुन के प्रति ईर्ष्यालु नहीं हुए, बल्कि अर्जुन के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुए, और अर्जुन का पराक्रम भी पूरी पृथ्वी में विदित हो गया, सब फैल गया है? और बाद में आगे चल करके जब पांचों पांडवों को जला डाल करके मारने की योजना बनाई धृतराष्ट्र ने और कौरवों ने, और अर्जुन और जो पांच पांडव कुंती ये बच करके निकल गए, तो ये भी समाचार मिला कि वो छिप करके अभी जिंदा है कहीं पर, छिपे हैं और जिंदा हैं अभी तक। तो द्रोणाचार्य की बहुत इच्छा थी कि अपनी कन्या द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करें, उनकी बहुत इच्छा थी। तो अर्जुन का पता लगाने के लिए कि अर्जुन है जरूर कहीं ना कहीं इस पृथ्वी में जिंदा है अर्जुन, अर्जुन का पता लगाने के ही लिए पूरे जो है दुनिया भर में उन्होंने ये समाचार भेज दिया था कि द्रौपदी का विवाह ऐसे करेंगे। जो व्यक्ति कड़ाही में जो है ना मछली को देखेगा और मछली ऊपर होगी और वो भी घूमती होगी मछली, और बाण मारना है कड़ाही में देख करके, कड़ाही, हाँ कड़ाही में जो मछली का प्रतिबिंब है उसको देखना है, वही मैं कह रहा हूं। कलाही में मछली को देखना है मतलब, ठीक कह रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं। कलाही में मछली का प्रतिबिंब देखना है, मछली ऊपर है तो अर्जुन ही ये काम कर सकते हैं। अर्जुन को ही खोजने के लिए राजा द्रुपद ने ये योजना बनाई थी। और जब आगे चल करके जब ये ब्राह्मण के रूप में आए थे और ब्राह्मण ने जो है द्रौपदी को जीत लिया, अरे पांचों ब्राह्मण, अब द्रुपद राजा द्रुपद ने अपने जासूसों को भेजा कि ठीक है हमारी कन्या तो चली गई ब्राह्मणों के पास, इस ब्राह्मण के पास चली गई हमारी कन्या, लेकिन ये ब्राह्मण वास्तव में कहाँ के हैं, किस जाति के हैं, किस वंश के हैं पता तो लगाओ। विवाह तो कर दिया अपनी कन्या से, लेकिन ये ब्राह्मण लोग कहाँ से आए ये भी कुछ पता नहीं, और किस जाति के ये भी कुछ पता नहीं। तो गुप्तचरों को भेजा तुम्हें पता लगाओ कि ये ब्राह्मण कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, नाम गांव का भी तो पता नहीं इनका है, इन लड़की तो ले गए। तो जासूस तो हैं, छिप छिप करके इनका पीछा किया तो देखा कि भाई जहां पर सोए जंगल में सोए ये पांचों पांडव, तो ये ब्राह्मण ब्राह्मण जैसे तो इनके आचरण नहीं है, वो सोते सोते समय भी अस्त्र शस्त्रों की बातें कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग तो शास्त्रों की बात करते हैं और ये तो अस्त्र शस्त्रों की बात कर, लड़ाई की बातें कर रहे हैं सोते सोते भी। फिर जासूस ने खबर दी कि लोग क्षत्रिय लगते हैं, ये ब्राह्मण नहीं है। फिर इनको निमंत्रण दिया, पांचों भाइयों को बुलाया, तो अपना बड़ा महल में जो है ना इनको भोजन करने के लिए बुलाया। तो सब कमरों में जो है इनको कहा कि आप लोग जरा महल को देखो, निरीक्षण करो, तब तक हम जो है आपका भोजन बनाते हैं। तो ये बहाना था द्रौपदी का ये देखने के लिए कि ये वास्तव में है किस जाति के हैं, किस वर्ण के हैं ये, है ना। तो किसी कमरे में बहुत से शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, बहुत से चीजें हैं, किसी कमरे में जो व्यापार का बहुत सा सामान पड़ा हुआ है, किसी कमरे में शूद्रों का सामान पड़ा हुआ है। ये देखने के लिए अगर ये शूद्र होंगे तो शूद्रों के जो चीजें हैं उनमें ये आकर्षित होंगे, अगर वैश्य होंगे तो वैश्यों के जो सामान उसमें आकर्षित होंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के जो शास्त्र हैं ग्रंथ उनमें आकर्षित होंगे। लेकिन वो तो सब देखे सब कमरे, जिस कमरे में बहुत से अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे तो वहां उसी कमरे में गए, वहीं पर बात करते हैं ये अस्त्र ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, पांचों के पांचों। फिर द्रोणाचार्य समझे ये लोग क्षत्रिय हैं, ये लोग क्षत्रिय हैं। तो बाद में जब पता चला कि ये अर्जुन है तो द्रोणाचार्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अर्जुन को ही चाहते थे और अर्जुन ने ही द्रौपदी को जीता है, तो बहुत खुश हुए द्रुपद। तो द्रुपद के मन में तभी से समा गई थी ये बात, जब अर्जुन ने द्रुपद को बांध लिया और हरा दिया, तभी से मन में बांध गई अपने मन में बात बैठा ली कि अपनी कन्या का ऐसी से करूंगा कि यही असली वीर है। तो द्रुपद ने उसी समय सोच लिया था। तो जो कन्या का पिता होता है वही चाहता है उसकी कन्या एक अच्छे पुरुष के पास जाए जो कि अच्छा वीर हो, अच्छा योग्य हो।
जब द्रौपदी का जो विवाह अर्जुन से हुआ तो फिर चारों भाई के कैसे बने?
हाँ, चारों भाई के साथ फिर कैसे विवाह हुआ, इसमें तो बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों में कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। पांचों पांडवों के साथ फिर कैसे विवाह हुआ, एक दो बस तीन चार बस, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं इस विषय में। देखो ये भी चरित्र देखो कि भक्तों का चरित्र कितना पवित्र होता है। कुंती महारानी उस समय क्योंकि काफी देर हो गई थी, रात हो गई थी, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, जितने भी राजा लोग थे सब कोशिश करते रहे, कई तो राजा लोग धनुष ही नहीं चढ़ा पाए, धनुष को वो पकड़ते हैं लेकिन वो चढ़ा नहीं पाए, उन्होंने दबाने की कोशिश की लेकिन वो धनुष एकदम से उछला और वो उछल करके दूर चले गए, धनुष में डोरी नहीं चढ़ा पाए बहुत से राजा लोग, और कुछ लोग राजा लोग डोरी चढ़ा पाए है ना, फिर धनुष को खींच नहीं पाए, और कुछ राजा लोग जैसे जरासंध थे, दुर्योधन थे, ये धनुष को तो खींच लिया उन्होंने, धनुष को खींच लिया लेकिन उसका निशाना जो है ना स्थिर नहीं कर पाए, तो इस तरह से जो है मतलब कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाया उस मछली का वेधन करने में। लेकिन जब अर्जुन ने मछली का वेधन कर लिया तो जितने भी क्षत्रिय राजा लोग थे वो बड़े उत्तेजित हो गए, अरे हम सब क्षत्रिय लोग इतने बड़ी संख्या में बैठे हुए, एक ब्राह्मण का बच्चा है वो उसने जो ना द्रौपदी से विवाह कर लिया, ये कैसे हो सकता है, हमारी सब नाक कट गई, हम क्षत्रियों की नाक कट गई, एक ब्राह्मण ने जो है द्रौपदी से विवाह कर लिया, चलो हम सब लोग मिल करके इस ब्राह्मण को मारेंगे। तो अर्जुन को मारने के लिए सब के सब क्षत्रिय इकट्ठे हो गए। तो वहां पर फिर काफी युद्ध की भी जो है घटना हो गई और काफी देर हो गई थी। बाद में जब द्रौपदी के साथ अर्जुन आए और पांचों पांडव भी थे, अर्जुन द्रौपदी के साथ थे, तो उस समय माता कुंती थक करके प्रतीक्षा करते करते, पांचों भाइयों की प्रतीक्षा करते करते, और वो लेट गई थी तो बहुत थकी हुई थी। तो जब दरवाजे में अर्जुन ने कुंती माता को पुकारा और कहा कि माता आज देखो आज हम कितना अच्छा पुरस्कार लेके आए हैं, बहुत अच्छा इनाम मिला हमको। तो माता ने कहा बेटा मैं बहुत थकी हूं, मैं देख नहीं पा रही हूं, लेकिन जो भी पुरस्कार हो तुम पांचों भाई आपस में मिलकर बांट लो। तब अर्जुन ने कहा अरे माँ ये तुमने क्या कह दिया, ये ऐसी चीज नहीं है जो बांटी जाए, कैसे बांटे। तो फिर माता कुंती को भी चिंता हो गई कि क्या मैंने कह दिया है? और जब देखा द्रौपदी, ओहो ये तो मेरे से बड़ा अनर्थ हो गया, अब क्या होगा, ये चिंता हो गई कि अब क्या होगा, उनके मुख से निकल गया। सोचो कितने ऊंचे चरित्र थे पहले भक्तों के, कि उनके मुख से कोई बात निकल जाए तो चिंता हो जाती कि उसको कैसे पूरा करें, धोखे में निकल गई तो क्या हो गया। आजकल तो लोग धोखे की बात क्या जानबूझ के भी कुछ बोल देते हैं और कोई चिंता नहीं करते, लेकिन देखो कुंती माता ने धोखे में कह दिया और उनको फिर चिंता हो गई अब क्या होगा, पांचों पांडवों को चिंता हो गई क्या होगा, अर्जुन को चिंता हो गई माता ने बोल दिया अब क्या करें। सोचो कैसा चरित्र है, उस समय सब चिंता कर रहे हैं क्या करें क्या करें। तो व्यास जी जो है अंतर्यामी हैं, उनके दिल की चिंता को जानकर के तुरंत आ गए, प्रकट हो गए वहीं पर। और व्यास जी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे मुख से जो निकला है वो द्रौपदी का ऐसा ही भाग्य है, और मैं जानता हूं द्रौपदी के पूर्वजन्म को जानता हूं, ये जो पांचों पांडव इनके भी पूर्वजन्म को मैं जानता हूं, मुझे सब पता है, और ये जो है ये विधि का विधान है जो तुम्हारे मुख से निकला, और द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ होना चाहिए। आप समस्या आ गई कि राजा द्रौपदी कैसे विवाह का उत्सव मनाए अपनी कन्या का, पांचों राजा द्रौपदी तो सुना जब इस बात को तो बहुत उत्तेजित हो गई कि ये क्या है, द्रौपदी का विवाह तो अर्जुन से होना है, पांचों पांडवों से कैसे होगा। लेकिन फिर व्यास जी ने समझाया कि नहीं नहीं ये जो है ना सामान्य स्त्री नहीं है द्रौपदी, और ये पांच पांडव सामान्य पुरुष नहीं है, तो और इनका जो है पूर्व जन्म से ही इनका जो है निश्चित हो चुका है, तो इनका जो है विवाह होना चाहिए और इससे किसी प्रकार का अनर्थ नहीं होगा। तो यद्यपि शास्त्र के अनुसार ये उचित नहीं है कि एक स्त्री का विवाह दो पुरुषों से हो, एक पुरुष की कई स्त्रियां हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के कई पति नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ऐसा कभी कभी हुआ, लेकिन ये कैसे, भगवान के आदेश से ही हुआ, कभी कभी व्यास जी के आदेश से हुआ पांच पांडवों का विवाह एक द्रौपदी से। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में है प्रचेता के दसों भाई थे, दक्ष के दस पुत्र थे प्रचेता, तो भगवान के आदेश से उन दसों भाइयों ने एक कन्या से विवाह किया था और उसका नाम था अचिकनी। उस कन्या का नाम था। तो ये कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है, इसकी नकल नहीं करनी चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का आपका?
सामान्य
वाग युद्ध का मतलब वाणी से युद्ध करना, मतलब उलट करके जवान चलाना, कभी कभी कहते ना कि हाँ तू जमा लड़ा रहा है मेरे से, है तू जानता नहीं मैं तुझसे बड़ा हूँ। छोटा भाई अगर बड़े भाई से भी अगर जवान लड़ाए या पुत्र पिता से जवान लड़ाए तो ये भी बुरा माना जाता है। अगर गलत बात पर भी पिता पुत्र को डांटे या गुरु शिष्य को डांटे तो भी शिष्य को गुरु से जवान नहीं लड़ाना चाहिए, पुत्र को पिता से जवान नहीं लड़ाना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है। यहां तक बताया गया है कि शिष्य जो है गुरु को दिन भर वो घूमता रहा शिष्य और भिक्षा मांगता रहा, और शाम को वो आता है जो कुछ भी उसको भिक्षा मिली वो गुरु को दे देता है। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और शाम को भी अगर गुरु जी भूल गए मान लो उसको खिलाने का, उसको बुला करके खिलाएं दें कुछ खाने को तो खाएगा, और नहीं तो वो उपवास करेगा। वो शिकायत नहीं कर सकता कि गुरु जी आपने ये गलत किया, मैं तो दिन भर भिक्षा मांगता रहा मेहनत करता रहा और आप बैठे रहे यहीं पर और आप खा रहे हैं और आप मुझे नहीं खिला रहे हैं, मैंने भिक्षा मांगी मैंने मेहनत की है। वो नहीं कह सकता। अगर गुरु भूल जाए तो वो कुछ नहीं खाएगा, उस दिन उपवास करेगा और सवेरे फिर चला जाएगा भिक्षा मांगने के लिए। इतना शिष्टाचार है। ये सब क्यों सिखाया जाता है? बचपन से ही 5 साल का बच्चा सीखे कि कैसे मतलब मर्यादा में रहा जाए। ये कोई शिष्टाचार नहीं है, तो इतनी मर्यादा है। मतलब प्रभुपाद जी करेंगे वाक युद्ध, मतलब वाणी के द्वारा भी युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन का ये कहना है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में अर्जुन की